हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दमन का अर्थ क्या है। दमन का अर्थ है, यह हमारी प्रकृति का अर्थ क्या है। वस्तुतः आत्मा की स्वरूपगत स्वभाव क्या है, वो कृष्ण का नित्य अंश है, लेकिन कोटि अरबों जन्मों से विभिन्न प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों का संग करने के कारण हमारा एक प्राकृत स्वभाव बन जाता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम कहेंगे इम्प्रेशंस या संस्कार, और उन इच्छाओं के आधार पर हमारी वृत्तियां होती हैं, ये कह सकते हैं हमारी आदतें हो जाती हैं। कोई जैसे क्रिया हम बार बार करते रहते हैं तो उसी क्रिया को करने की हमारी आदत बन जाती है। तो इस जगत में हम बहुत भोग कर रहे हैं और भोग अलग अलग गुणों के संग के अनुसार कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारी प्रकृति हो जाती है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी या इनका मिश्रण, और उसके अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं वो कहते हैं हम क्या करें, हम चाहते हैं कि हम क्रोध नहीं करें, लेकिन फिर भी हमें क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार की उनकी प्रकृति हो गई है, ऐसे इस प्रकार के गुणों का संग करने के कारण। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे प्रकृति के लोग, जो भी व्यक्ति है, भले ही उसे ज्ञान हो कि ये चीज ठीक है, फिर भी प्रकृति के गुणों के संसार के कारण जो उसका स्वभाव है वो व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है। तो उसका दमन करना उचित नहीं है। जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है, जो वैश्य है और जो शूद्र है, वह अपने अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करे, लेकिन अपने कार्यों को कृष्ण को समर्पित करे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने सातवें अध्याय में कहा है। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, मम माया दुरतया त्रिभिर्गुणमयीर भावेर एभि सर्वमिदं जगत। ये जो त्रिगुणात्मक माया है पूरे जगत को मोहित कर रही है, और ये जो माया है ये भगवान की माया है, और इसको पार पाना अत्यंत कठिन है बिना भगवान कृष्ण के शरणागत हुए। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ये बहुत सुंदर लाइन है। हम सिद्धांत में समझ लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, फिर भी शरीर के भोगों के प्रति आसक्ति के कारण व्यक्ति फिर शारीरिक स्तर पर आ जाता है, और जब व्यक्ति शारीरिक स्तर पर आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का पाप करने से चूकेगा नहीं। ऐसे अनेक तथा कथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। कहने का अर्थ है कि बाह्य दृष्टि से आध्यात्मवाद का ढोंग कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन भौतिक इच्छाओं के वश में वशीभूत रहता है वह व्यक्ति, और पर्सनल जीवन में वो इन इच्छाओं को प्रेरित कर पूर्ण करने में, इनकी तृप्ति करने में वो लगा रहता है। एक बात प्रभुपाद जी और जिस संबंध में बोलते हैं कि बहुत सारे लोग अमेरिका में, या बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग फिलोसोफर्स हैं संस्कृत के, लेकिन एक हाथ में शिकार होता है और दूसरे हाथ में वेदांत तो होता है। तो इस प्रकार से उनको संस्कृत ज्ञान तो है लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाते हैं, और प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में वो ग्रस्त रहते हैं। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया था साधन के रूप में कि श्रेष्ठ साधन क्या है, तो उसमें बताते हैं, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यम। कौन व्यक्ति भगवान को जीत सकता है, माया के पार जा सकता है? जो ज्ञान के प्रयास को त्याग दे। ज्ञान का प्रयास मतलब निर्विशेष ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करना, भगवत विषय ज्ञान के अलावा कुछ और प्रयास करना। और क्या करे व्यक्ति? भगवान की वार्ता में संलग्न हो, भगवत कथा हरि कथा में को सुने। तो कहाँ रह के सुने? क्या उसे अपने घर त्यागने की आवश्यकता है? वस्तुतः नहीं। उसमें लिखा है स्थाने स्थितः, अपने ही स्थान में रहकर, अपने घर में ही रह करके अपने नियत कर्म को करे, ड्यूटी बाउंड होकर के, कर्तव्य बुद्धि से। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हरि कथा में संलग्न होना। जितना अधिक हम हरि कथा में, हरि नाम में, भगवत सेवा में नियोजित रहेंगे, उतना ही इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग से हुए दूषण से हम शुद्ध होते चले जाते हैं। एक और बात है कि भले ही हम समझ लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं ज्ञान की दृष्टि से, लेकिन तुरंत ही इस आध्यात्मिक धरातल पर आना संभव नहीं है। और इस आध्यात्मिक धरातल पर आने का ये क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, कसौटी ये है कि व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं में कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर उसने ये साक्षात्कार कर लिया है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, लेकिन हम लोग ईमानदारी से बात करें तो हम पूरी तरह से इस तरह से शुद्ध नहीं हैं। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि अपने नियत कर्म को करें, स्पेशली दिन के समय, और सुबह और शाम फिर से हम हरि कथा, भगवान की आरती, कीर्तन कथा, जप, इस प्रकार से इसमें संलग्न हों। तो धीरे धीरे करके हम भौतिक चेतना के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि हमारी भक्ति की प्रगति में, अध्यात्म की प्रगति में क्या बंधन है और उससे हम कैसे बचना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तात्पर्य को पहले देखेंगे फिर हम चर्चा करेंगे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने के में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उसे शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है, अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य आम स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है, इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है, जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत के पद प्रासीन होना है। तो कुछ चीजें हमें समझने आने का प्रयास करेंगे इस श्लोक में। श्री बलदेव विद्याभूषण इस संबंध में बड़ा सुंदर बात बताते हैं, थोड़ा उसको भी देखेंगे, फिर बात प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर भी चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक को विचार करते हुए व्यक्ति कह सकता है कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति भी अगर शास्त्र का नियम का पालन नहीं करता है, यम नियम का पालन नहीं करता है, यम का अर्थ मतलब जो कार्य नहीं करने होते हैं, और नियम का मतलब होता है जो कार्य करने होते हैं, और अपनी पापमय वासनाओं के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है, तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता क्या है? शास्त्र की बात तो कोई सुनेगा नहीं। तो भगवान ये समझा रहे हैं इस श्लोक में कि जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं उसके प्रति राग यानी आसक्ति, अच्छा लगना, और द्वेष, उनके विपरीत, इंद्रिय तृप्ति के विपरीत कुछ कार्य करना, इसमें द्वेष होता है, मैं अच्छा नहीं लगता, इसमें बड़ी अच्छे से हमारी बुद्धि है, व्यवस्थित हो गई बुद्धि। अब मान लीजिए शास्त्र ने बताया है कि साधु संग करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारे द्वेष का उद्देश्य बन जाएंगे, हमारे द्वेष कारण हमें उनके उससे द्वेष होने लगेगा, करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इनको अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा के रूप में व्यक्ति देखता है। लेकिन भले ही सामान्य व्यक्ति इनको अपने जीवन में एक बाधा के रूप में देखे, कि अरे बोझ के रूप में देखे, फिर भी जो व्यक्ति अपना परम कल्याण चाहते हैं उनको इस राग और द्वेष में, यानी इंद्रिय तृप्ति के प्रति राग और भक्तों के संग के प्रति द्वेष से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये राग और द्वेष यही परिपंथिन है, यानी कि भक्ति के पथ पे, अध्यात्म के पथ पे बाधा है। ये जो राग और द्वेष हैं, इंद्रिय तृप्ति में राग और सत्संग के प्रति द्वेष, ये एक चोर की तरह है, और चोर एक यात्री के संग चलता रहता है और उसका धन वो चुरा लेता है, और धन क्या है? भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इंद्रिय तृप्ति के प्रति राग और वैष्णवों के संग या साधु संग के प्रति द्वेष, ये एक चोर के समान है जो हमारे भक्ति के धन को छीन लेते हैं। तो इस प्रकार के राग और द्वेष से हमको बचना चाहिए, शास्त्र के नियम को पालन करना चाहिए। तो जो वासनाएं हैं हमारे हृदय में, बुरी वासनाएं जो कि अनादि काल से हमारे चित्र पे छपी हुई हैं, वो किस प्रकार की इच्छा को जन्म देती हैं? दूसरों की पत्नियों से बात करना। प्रभुपाद जी भी यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्र में है कि अन्य स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, फिर भी लोगों के हृदय में इच्छा रहती है। तो इस इच्छा के साथ साथ ज्ञान भी उदित होता है, कैसे ये कार्य किया जाए, भले ही शास्त्र में वर्जित है, और इसी के इस इच्छा के साथ साथ ही अज्ञान भी होता है उदित, जो इस कार्य को करने में बाधा है उसके, ये क्षमा कीजिएगा, जो शास्त्र में बताया गया है कि ये कार्य नहीं करना है, दूसरों की स्त्रियों से बात नहीं करनी है या दूसरों की स्त्रियों का संग नहीं करना है, उसके प्रति हम अज्ञान में हो जाते हैं, और इसी कारण से, इस इच्छा के कारण लोग बुरे कार्य करते हैं। अब द्वेष के बारे में बात करें तो जब भक्तों से सेवा, भक्तों की सेवा या भक्तों का संग करने के प्रति द्वेष रहेगा, तो उस द्वेष की इच्छा से ये ज्ञान उदित होगा कि भक्तों से बात करना अच्छा नहीं है, और इस ज्ञान का भाव होगा कि भक्तों का संग करना हमारे लिए अच्छा है। इस प्रकार से व्यक्ति भक्तों का संग से बचने का प्रयास करेगा। और इस कारण से आप देखिए, बहुत सारे लोग जब भक्त का संग करते हैं तो परिवार वाले इस द्वेष को प्रकट करते हैं, तुम साधुओं के पास क्यों जाते हो, वहां जाके तुम्हें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, नौकरी करो, बच्चों का पालन करो, जो कि व्यक्ति करता भी है। छुट्टी के समय में अगर वो हरे कृष्णा करने जाता है तभी लोगों को, घर वालों को ऑब्जेक्शन होता है। प्रस्तुत रूप से देख सकते हैं इस बात को। शास्त्र ये बोलता है, शास्त्र का निर्देश ये है कि व्यक्ति अगर भक्तों का संग करता है तो अपने आप ही जो बुरी चीजें हैं उनके प्रति उसकी आसक्ति वो समाप्त हो जाती है और सत्संग में उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति को इस प्रकार से अगर शास्त्रों का नियम वो पालन करता है तो वो बुरी वासनाओं से बच सकता है। तो बुरी वासनाओं से बचने का आधार केवल ज्ञान नहीं है बल्कि सत्संग है। और सत्संग में होता क्या है, व्यक्ति जिन व्यक्तियों का संग करता है और उन व्यक्तियों की आसक्ति जिन वस्तुओं में होती है उस प्रकार की आसक्ति हमारे हृदय में भी आ जाती है। अब श्री प्रभुपाद जी के परपट पर थोड़ा और विचार करें तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भले ही भोग की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं, लाइसेंस दिया गया है, लेकिन यही शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे स्त्री संघ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पत्नी के संग कर सकता है व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन इससे भोग की वासना समाप्त नहीं हो जाती है, केवल नियमित हो जाती है, समाज में व्यवस्थित हो जाती है। बस वस्तुतः हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इन इच्छाओं से पूरी तरह से निवृत्त हों, और ये केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इस बात को प्रभुपाद जी ने लास्ट में बताया था। तो व्यक्ति जैसे खाना खाने के लिए कोई मनाही नहीं है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी कोई मनाही नहीं है, तो भगवान का हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अच्छा खाने की जो भावना है वो भी धीरे धीरे करके हमारे हृदय से चली जाती है। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि भोग के जो लाइसेंस हैं उनका बहुत अधिक उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करे, नहीं तो इंद्रियों को संयमित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक श्लोक और देखेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विकुर्णः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य यानी यहाँ पे अर्जुन को भगवान ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय के कर्म को त्याग करके आपको ब्राह्मण का कर्म करना है, वो आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप जो क्षत्रिय के कार्य कर रहे हैं वो कार्य करें, उसको कृष्ण भावनामृत में करने का प्रयास करें। तात्पर्य अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। एक कहावत है, जिसका कार्य उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जो जिसका कार्य है वह इसको वही करना चाहिए, और अगर हम दूसरे का कार्य करते हैं तो हमें दंड मिलता है, हम ठीक से नहीं कर पाते। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है, यानी कि रजगुण तमगुण और सतगुण से मिश्रित चेतना के अनुसार शास्त्र हमें नियम देते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ और मेरे लिए यम नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा होगा हमारे साथ में।
अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के यानी कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और उसे गुरु के मार्गदर्शन में प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ये सीखना चाहिए कि वो कौन सा कार्य करे जिससे वो या किस प्रकार से नियोजित हो जिससे वो कृष्ण की सेवा कर सके और साथ साथ भक्ति में प्रगति कर सके अपने कार्यों को करते हुए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है, क्योंकि वो रजोगुण उसको प्रेरित करेगा हिंसक होने के लिए, क्रोध करने के लिए, लेकिन उस क्रोध का उपयोग धर्म के अनुसार होना चाहिए। इसी तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। यानी कि जब क्षत्रिय एक सन्यासी को जो गति प्राप्त होती है वही गति क्षत्रिय को प्राप्त होती है युद्ध स्थल में मृत्यु वीर गति को प्राप्त होने से, क्योंकि वो अपने धर्म का आचरण कर रहे थे। आगे जाके भगवान बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि के संग धुआं होता ही है, इस प्रकार से जगत में आप कोई भी कार्य करेंगे कोई ना कोई दोष रहेगा, लेकिन अच्छा होगा कि अगर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे, अब जो उसका जो कर्तव्य है उसका पालन करे, तो फिर उससे उसकी प्रगति होगी, उसमें कोई पाप उसको लगता नहीं। उस कार्य में दोष जरूर रहेगा लेकिन उसका पाप उस व्यक्ति को नहीं लगता है। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। ये विशिष्ट स्थिति है जिसमें अगर व्यक्ति एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहा है तो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य किसी भी तरह से कार्य कर सकता है। ये एक महान भक्त का आश्रय लेने का लाभ होता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में भी ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में भी क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र जी का और परशुराम जी का। विश्वामित्र राजा थे लेकिन तप के द्वारा जब वो गुणों के संसर्ग से पूरी तरह से मुक्त हो गए तो ब्राह्मण का पद भी उन्हें प्राप्त कर लिया। और परशुराम तो भगवान के अवतार हैं ही, उनके लिए तो वो गुणों के बंधन में आने का कोई मतलब ही नहीं है। इस कारण से ब्राह्मण होते हुए भी वो क्षत्रिय का कार्य किए, क्योंकि उनका उद्देश्य जो गलत क्षत्रिय थे उनका दमन करने के लिए हुआ था। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग भौतिक प्रकृति के बंधन में हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए। प्रैक्टिकल लेवल पर अगर हम बात करें, हमें सतोगुण का संग करने का प्रयास करना चाहिए। भले ही हम ब्राह्मण ना बन सके लेकिन सुबह उठ करके मंगल आरती करें, जप करें और फिर शाम को भगवान का नाम जप करें, कथा श्रवण करें, ये डायरेक्ट विधि है जिसके द्वारा हम रजगुण तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। और फिर दिन में जो हमारी क्रियाएँ हैं उनको करना तो हमारे लिए आवश्यक है ही, लेकिन दिन के क्रियाओं को करते करते व्यक्ति ये ना भूल जाए कि भक्ति इसी सारा क्रियाएं जो इसलिए कर रहा है ताकि वो भक्ति ठीक से कर सके, तो ये उद्देश्य व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। अब आगे प्रश्न करेंगे अर्जुन कि ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप करता है, तो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन व्यक्ति इसको पाप कराता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।